नमः श्री गुरुदेव नमः। दास दोनों हाथ जोड़ के संगत दे चरणा च मत्था टेकते हुए अपने गुनाह की माफी ले अरदास बेनती करता है। संगत की समर्था है बख्शन की, बख्शन की कृपालता करो। संगत दे बख्शे नूं गुरु साहब भी बख्श देंगे।
सतगुरु सीव सरब फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए।
सतगुरु सेव, सतगुर दी सेवा करो, फल मिलेगा। कैसा फल? जन्म मरण की मल, जन्म और मरण अनंत काल तो यह जीवात्मा जदों भी यह मनुखे जन्म दे विच आंदी है, यह कुछ ना कुछ किरिया करती है। बाकी दे 84 लाख जामिया दे विच यह जो कुछ भी करती है उसका कोई भुगतान नहीं है। वो तो पिछले जन्मा दे विच जदों भी यह इंसानी जामे दे विच आई सी और इसने जिस भी किरिया नूं अपनाया सी, कामना और इच्छा दे तहत, यानी कि मनुखे जन्म दे विच कोई भी किरिया कितनी भी सूक्ष्म होवे, ख्याल रूप दे विच भी होवे, अगर उस दे विच कामना है, इच्छा है, तो याद रखना इस दा भुगतान भी है, इस दी कीमत भी है। कीमत दिते बिना इस जगत तो किसी नूं आज तक कुछ नहीं मिलिया। बेशक उस काल दी रचना है, उस दे अवतार अपने रूप ही क्यों ना हो, भगवान श्री रामचंद्र जी आए सन त्रेते युग दे विच, उन्होंने बाली नूं छुप के तीर मारिया सी। बाली ने जिसले चोला छड़िया उसले एक ही सवाल किया सी, हे राम मैं तेरा की बिगाड़िया सी जे तू मैनू छुप करके मारिया, इस दा तैनू हिसाब देना पेगा। द्वापर दे विच जदों उही ताकत काल दी विष्णु दे रूप अवतार ला करके किशन दे रूप विच आए सन और आखिरी समय उन्होंने जिहड़ा चोला छड़िया सी उस बाली दा, उस वक्त तो पील दे रूप विच सी, उसने उन्होंने पैर दे विच पदम सी, सूर्य दी किरणा जिहड़ियां सन रिफलैक्ट कर रही सन, उसने समझा हिरण दी अख है और उसने निशाना लगा करके तीर छोड़िया। तीर जहर दा बुझा होया सी, वह उन्होंने पैर दे विच उस पदम विच लगा और अखीर उन्होंने उस कर्म का भुगतान देना पिया। इस तो विचार करके देख लो, सारा जगत उस राम की पूजा कर रहा है, अगर वह भी कीती गई किरिया तो उसके भुगतान तो बच नहीं सके, फिर असी कैसा हंकार ला करके बैठे हैं। सतगुरु जी का सतगुरु तो असी समझ ही नहीं सके। सतगुरु सेव सदा फल पाए, यह केड़ा फल है और कैसी सेवा है? सतगुरु किसनू किया जा रहा है और यह जन्म मरण की मैल किस तरीके दे नाल कट्टी जा सकती है? असी बहुत सारे भरमा दे विच फसे हुए हां, असी आकार नूं सतगुरु समझ रहे हां। आकार कोई सतगुरु नहीं है, एक मीडियम है, एक साधन है, एक पौड़ी है, इसका असी फायदा चुकना है। पौड़ी दे उपर खड़ा रह करके कोई भी छत तक नहीं पहुंच सकता, हां पौड़ी का फायदा चुक सकता है, बाकी दियां पौड़ियां चढ़ सकता है। एक पौड़ी चढ़ के दूसरी तीसरी फिर उसनू छत जरूर मिल जाती है। सो सतगुरु जो है वह शब्द है, शब्द नूं असी समझ नहीं सके। किसी ने गुरमुखी दे लफ्जा नूं शब्द कहता, नाम कहता, विचार करके देखो ये शब्द जो सारी धरती आकाश नूं अनंत मंडलां नूं बनाने वाला है, वह कोई लफज किस तरीके दे नाल हो सकता है? अगर कुछ लफज जड़े असी लै करके हंकार दे विच बैठे हाँ, असी नाम लै लिया, तो विचार करके देखो गुरु ग्रंथ साहब दे विच 1430 पन्ने ने और ये हजारा ही अक्षर जड़े ने मौजूद ने, क्या यह सचखंड की बाणी नहीं सी? क्या यह सचखंड का दिता है नाम नहीं सी? यह किन्हां ने उच्चारण किया सी? पूरन सतगुरां दे कट दे विचों उत्पन्न हुईयां वह सचखंड की ताकत और तरंगा सन, जिहड़ियां लफज बन करके साडे कन्नां नाल टकराईयां और असी उन्हां दा संकलन कर लिया, उसदे ग्रंथ बन गया, पोथी बन गई। तो क्या वह नाम नहीं है? अगर वह नाम सी तो फिर क्या वह नाम थुड़ गया सी? ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭੀੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਵੇ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਰ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅੰਤਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕਈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਮ ਪੈਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਪਾਣਾ ਕਿਦੋਂ ਸੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤਵ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ कोर कालयुग दे विच हर मन जड़ा है काल दी पूरी ताकत अवतार ला करके मौजूद है और हर जीवात्मा दे नाल ए अवतार मौजूद है और इसने इस जीवात्मा नु परमा करके रखा है, यानी कि अंदर नहीं जाएगा किसी भी कीमत ते और उसनु लड़न दे नाल उस असि उस दे नाल लड़ाई नहीं करते, उसनु अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करते। तो इंद्री दे जप दे नाल ते अज तक किसी नु कुछ नहीं मिलिया। विचार करके देखो सारी बाणी दे विच जप तप तीरथ व्रत नेम जो कुछ किया जप की है सिमरन ही तो है। अगर उस जप दे नाल नहीं मिल सकया तो क्या लफज बदल दे नाल अगर सिमरन कह देवांगे तो उसके नाल मिल जाएगा। असली भाव की सीगा कि गुरु साहबा ने सानू एक निशान दिता, एक निशान की सीगा कि इस निशान दे नाल जुड़ जाइए। जुड़ना किसने सीगा? मन ने जुड़ना सी। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसका रूप है, उसके भी सारे गुण जड़े ने पहले तो ही मौजूद ने। उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं, कोई कटार नहीं, कोई जमा नहीं, उसके ऊपर किसी भी ताकत का कोई प्रभाव पै सकता ही नहीं। अनंत काल तो वह परमात्मा का गुण समुद्र की बूंद अपनी पूरी ताकत ला करके अंतर के मौजूद है। और सिर्फ समझण वाली गल है कि मनुखे जन्म के जो असी इच्छा और कामना नु ला करके इस क्रिया नु धारण करदे आ, बेशक सतगुरां दे मुतलक असी धारण करदे आ, अगर इच्छा रख ली है ते इच्छा पूर्ण होएगी, अवश्य पूर्ण होएगी। काल दी लीला दा एक बहुत ही सूक्ष्म पेज आ सतगुरु अज प्रगट कर रहे ने, बहुत ही गहरे पेज इस काल ने इस जगत दे विच प्रचारित किए गए ने। विचार करके देखो असी जड़ वस्तुआं दे अगे, पोथियां दे अगे, मूर्तियां दे अगे, होर ते होर चेतन दे अगे, यानी कि पूर्ण सतगुरां दे अगे रोंदे बिलखदे बिलांदे आ। किस वास्ते? अपनी इच्छा और कामना नु पूर्ण करन वास्ते। एक गल नु हमेशा ही चेता रखो, जो कुछ निश्चित है वह निश्चित है, उसनु कोई बदल नहीं सकता। और जो कुछ असी चाहते हैं साढ़े अंदर ताकत नहीं है कि वह चीज हो जाए, जब दोनों ही गल अपनी जगह निश्चित और अटल ने तो फिर असी रो बिला किस ले रहे हैं। यह मन की एक बड़ी सूक्ष्म चाल है किस तरीके दे नाल वह इच्छा और कामना नु पैदा करता है। और उसके नाल ही यह बड़ा गहरा भेद है कि अगर ख्याल के रूप दे विच भी बाणी स्पष्ट कर दी है, निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, एक कड़ी रस मांडे फिर बोर बोर पछतावे। एक कड़ी दे एक कड़ी सिमरन की किसनु कहंदे ने, यानी कि मन ने अगर अंतर दे विच ख्याल रूप दे विच भी भोग कर लिया इस जगत दे विच स्त्री ने पुरुष या पुरुष ने स्त्री का, तो विचार कर गए एक करोड़ दिन यानी कि 27,500 साल एक निमक कड़ी स्वाद का फल मिलता तपदे थंबा दे नाल इस जीवात्मा नु नरक दे विच चिपकाया जाता है। यानी कि सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच मन ने एक कामना की एक भोग किया इस संसार का, तो उसका भुगतान उस काल ने उसनु 27,500 साल दिते। तो विचार करके देख लो अगर अंतर दे विच या जुबान दे नाल असी पूर्ण सतगुरु या ग्रंथ पोथी या मूर्ति दे अगे किसी इच्छा नु जाहिर करांगे, कामना नु जाहिर करांगे, तो क्या वह पूरी नहीं होगी? एक काल की बड़ी सूक्ष्म चाल है और बड़ी चलाकी दे नाल जितनिया भी कामना खुद ही पैदा करता है और खुद ही नोट करता है। चित्रगुप्त कोई भी नहीं है, ये मन आप ही है। सर कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। ये जीवात्मा जो भी मनुखे जन्म में आती है ये जो भी क्रिया अपनाती है इच्छा और कामना के तहत ये खुद ही अपनी डे बुक लिखती है और ये डे बुक ला करके धर्मराज के दरबार में आप ही पेश होती है। मन तो लेखा मंगिए जित कीता व्यापार, खाना पीना पहनना मन की खुशी खवार। असी जो कुछ भी किरिया कर रहे हैं सवेर तो शाम तक विचार करके देखो किस दे हुक्म दे नाल कर रहे हैं, मन दे हुक्म दे नाल। मन है विरोधी ताकत, यानी कि काल दा अंश है। बड़ी चतुराई दे नाल ए कामना और इच्छा नु लै करके खाना पीना और पहनना, इस तो इलावा असी कुछ होर भी करते हैं। अगर सतगुरां दे कोल जा करके शारीरिक रूप की कुछ किरिया असी अपना भी लैंदे हैं तो उसके पिछे बड़ी चलाकी दे नाल इस मन ने अपनिया कुछ ना कुछ स्वार्थ हेतु इच्छा रखिया ने, कुछ कामना रखिया ने, चाहे किसी भी तरीके दिया ने। और सारी डे बुक जीवात्मा खुद ही लिख दी है। और विचार करके देख लो ये कदी भी कीती गई इच्छा खाली नहीं जाती। इस जन्म दे विच अगर साड़ी इच्छा पूरी नहीं होएगी तो अगले जन्म च होएगी। काल तो चाहता ही यही है कि तुसी कोई इच्छा पैदा करो, अपने मुखार बिंचो उच्चारण ते करो कि मैनू यह वस्तु से संबंध चाहिए है। बड़ी चलाकी और खूबसूरती दे नाल उसनु लिख लैंदा है और तुहाडा जन्म पक्का हो गया। यानी कि तुसी इच्छा कीती नहीं कि जन्म अपना खुद ही पक्का कर लिया, आपे बीज आपे ही खाओ। ये असी दिन रात मनुखे जन्म दे विच आकर के इच्छा और संबंधा दे बीज बो रहे हैं। ये बीज साध संगत जी खाएगा कौन? क्या सतगुरु आकर के इस फसल नु कटणगे? नहीं, ये मनुखे जन्म दे विच जीवात्मा नु ही आकर के कटने पैंदे ने। और अगर निचला बीज बो देगा, किसी का हक मार लेगा, किसी दे नाल चोरी निंदिया चुगली कर लेगा तो निचले जामिया चला जाएगा। कोई ऐसी अवस होगी काम दे मतलब बच्चे दे मतलब
तो और निचलिया श्रेणियां चला जाएगा, उतली दान पुन बहुत सारे करेगा तो देवी देवत्या भी झूल में चला जाएगा। यानी कि आपे बीज खाओ की गल जड़ी है, बीज आप ही बोया तो तेन आप ही खाना पेगा। फिर कैसा अहंकार ला करके असी बैठे हैं कि असी ले आए हैं, असी पार हो जावांगे, असी सतगुरु वाले हाँ। सतगुरु वाले तो हुई है जो सतगुरु के नाल मिल चुकी हुई है। असी मिले हुए मन के नाल, मन के हुक्म के उपर कुरबान है, मन के किते ते खाना पीना खुशी खवार खुशी इसन खुश कर रहे हैं। कहने तेन खुआर होना पेगा, जिंदे जी तेन मौत के मुंह के बीच धकेल देंगे। कारण की सीगा कि तू इसी के हुक्म के नाल सारी किरिया नू अपनाया। मन तो लेखा मांगिए जिस कीता व्यापार, ए मन ही जा करके चित्रगुप्त दे दरबार दे भी सारियां गवाहियां देंदा जे। जिस नूं असीं मित्र बना करके बैठे हैं, ये समझ के बैठे हैं, इस दे उपर कुर्बान हो रहे हैं, इसनूं खुश रख रहे हैं, इसी ने साडी पोल खोलनी है कि इस जीवात्मा ने ये कर्म कीते ने। करदा खुद है व्यापार, खुद करदा है, आत्मा नूं नाल घसीटी फिरदा, ताकत सारी उसदे कोल लै लैंदा, जो खर्चा उसदे कोल है, सौसा की पूंजी लै करके इस नूं मनुखा जन्म जिहड़ा मिलिया सी, दो पैर दा किस वास्ते मिलिया सी, पंजवां तत् बुद्धि दा तत् किस वास्ते मिलिया सी, अपने सतगुरु परमात्मा नूं प्राप्त करन वास्ते, उहदे विच लीन होण वास्ते मिलिया सी, पर इसने कीता की जा करके मन दे उपर कुर्बान हो गया। हुण पराए खसम नूं बना करके कोई औरत कहे कि मैं सुहागण हो जाऊंगी, तो अज तक तो कोई सुहागण हो ही नहीं, तो फल कितों मिल जाएगा? फल उसी में मिलता है जड़ी की पतिवरता होंगी, अपने पति के उपर कुर्बान होंगी। खसम कौन है? साडा पति कौन है? इस जीवात्मा का पति खसम इको ही परमात्मा अकाल पुरख है। और असि उस अपने खसम नु छोड़ करके पराए पुरुष के नाल रंग रलिया मना रही, और पराए पुरुष के नाल मना रही रंग रलिया। अगर बच्चा जम भी देगी तो इस जगत दे विच कोई उसनु धारण नहीं करन देगा। कारण की सीगा? क्योंकि ये नजायज औलाद कही जाएगी। ठीक उसे तरीके दे नाल नजायज औलाद की सी, ये जितने भी जन्म उत्तम या निचली जूना ने सानू मिलते ने, यह नजायज औलाद ने। क्यों? असि मन दे नाल रंग रलिया मना रही वा। तो इस तरीके दे नाल गुरु साहब उपदेश करते हैं कि उस फल की प्राप्ति नहीं होंगी जिस फल नूं प्राप्त करके जन्म जन्म की मैल जड़ी है कट जाती है। ये जड़ियां इच्छा और स्वार्थ ने ये कदों कट्टणगे? जदों सानू ओ ताकत मिल जाएगी जिसनूं सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु कोई लफज या आकार नहीं है, यानी कि उसके पिछे वो ताकत काम कर रही है शब्द की। शब्द किस तरीके दे नाल इस मंडल दे विच आ करके जीवात्मा का उद्धार कर सकता है? बुद्धि तत्व ते मिल गया, विचार कर सकता, सोच सकता है, फिर किस तरीके दे नाल इसनूं समझाया जा सकता? समझाने लई एक ताकत की लोड़ है, एक कट की लोड़ है, एक मशीन की लोड़ है। उस मशीन के जरिए ही वह शब्द जो है काम करता है, और असि मशीन तक सीमित रह जाते हैं। विचार करके देख लो असं मंजिल तक किवें पहुंचांगे अगर असि कार नूं सब कुछ समझ लवेंगे। कार एक साधन है, मीडिया की सफाई करनी, उसका रख रखाव करना, पानी तेल चेक करना, यह साडा फर्ज बनता है। पर फर्ज तो उत्ते यह बनता है कि असं अपनी मंजिल के उपर नजर रखिए, मंजिल नूं प्राप्त करने लई उदमशील होइए। अगर उसके उत्ते साडी नजर नहीं है, कार दे विच बैठे हैं, तो असं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सानू चलना पेगा, इस पौड़ी के उपर पैर रख करके सानू अगलिया पौड़ियां भी चढ़निया पैणगियां। अगर असं इको पौड़ी के उपर खड़े हाँ तो छत तो कदे दीदार नहीं हो सकते, और नाम सानू कदे नहीं मिल सकता जिस दे विच प्रकाश और आवाज है। इस करके गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट उपदेश करते हैं, सतगुरु की सेवा करनी है। तो सतगुरु की है? अगर असि सतगुरु की डेफिनेशन ही गलत कट ली, असि उस आकार में सतगुरु कह दिता, तो उसका फल किस तरह मिल जाएगा, सेवा किस तरह कर लांगे? असि बाहर दे बाहर ही रह गए, आकार समझिया और शरीरिक रूप की सेवा नूं असि सेवा समझ लिया, तो यह सारा ही अर्थ जरा बिल्कुल ही उल्टा लै गया। असि बाहर दे बाहर ही रह गए, और बाहर अज तक किसी कुछ नहीं मिलिया। अगर परमात्मा अज तक किसी मिलिया है तो अंतर दे विच मिलिया है, जिसनों मिल रहा है अंतर दे विच मिल रहा है, और जिसनों मिलेगा वह भी अंतर दे विच ही मिलेगा। बाहर ना परमात्मा है ना किसी नूं मिले। अगर असि कहने हैं जड़ चेतन सब दे विच है, कोई शक नहीं, सब नूं आधार दे रखा उस ताकत ने, पर जब तक ये जीवात्मा अंतर दे विच उस ताकत नूं मिल नहीं लैंदी, तब तक उसका एक कहना बाहर की कण कण दे विच भगवान है, यह झूठ है। क्यों? क्योंकि उसकी एक कल्पना है, जिसने अंतर दे विच उस परमात्मा नूं शब्द नूं नाम नूं कीर्तन नूं अकथ कथा नूं प्राप्त कर लिया, अपनी कन्नी सुन लिया, वह कन कोई होर ने, वह अख कोई होर है जड़ी उस शब्द नूं देख सकती है, उस शब्द नूं सुन सकती है। यह मन बुद्धि और इंद्रिया का विषय नहीं है, यह आत्मा का विषय है। वह परमात्मा का गुण जिसनों शब्द किया गया है, वह आत्मा नहीं आया है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा नूं ले जाण वास्ते ही यह शब्द इस जगत दे विच जो है अवतारित किया गया, और उसके एक खिचाव है, अट्रैक्शन है। गुरु जिस तरीके मैगनेट खिंचता है लोहे, उसे तरीके दे नाल यह शब्द जड़ा है आत्मा खिंचता है। हुण विचार करके देखो, यह खिचाव तो अंतर दे विच हर वक्त हर पल मौजूद है, तो अज तक आत्मा खिंच क्यों नहीं सकिया? उसका सब तो वड्डा कारण यह है कि जड़िया इच्छा और कामना दीआं बेड़ियां असीं पा रखियां ने ना, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਦੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਿੱਚਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੁਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੁਭਾਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੱਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਰ ਪੜੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਵਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ 84 ਫਿਰ ਖੜੀ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ 4 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 6 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਰਿੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੀਜ ਵੀ ਐਸਾ ਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਤਲੇ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਰ, ਪਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਨੌ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਰਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਾ ਅੰਧਕਾਰ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਮਹੀਨ ਜਾਲ बुन रखा कि इस जाल बरीक तो बरीक मछली भी निकल सकती, असि तो बहुत वड़े वड़े मगरमच्छ बनी बैठे हैं, इस जाल चो किस तरीके दे नाल निकल जावांगे, कौन सानू कढ़ेगा, जिन्हां नूं असि समझ करके बैठे हैं ये तां ही कढ़णगे जब जिस तरीके दे नाल लक्कड़ चो अग प्रगट हो जाती है, जब तक असि अंतर दे विच अपने सतगुरु नूं उस परमात्मा नूं प्रगट नहीं कर लैंदे तां तक असि उन्हां तो फायदा चुक सकते ही नहीं। लक्कड़ कोलों अग दा काम लैणा है, सतगुरु कोलों सतगुरु दा काम लैणा है, शब्द दा काम लैणा है, तो उसनु अपने अंतर प्रगट करो, अंतर ही प्रगट ता होंगे, अंतर दे विच मौजूद ने हर पल हर कड़ी शब्द तुनकारे दे रहा, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, होर कुछ भी नहीं हैगा, और वो अंतर दे विच हर पल साढ़े आन तो पहले तो ही मौजूद है, इस जगत दे विच सारी रचना नू बनाने वाला ही ये शब्द है, आधार देने वाला ही है, और जिसले रचना खत्म हो जाएगी परले मां परले दे बाद उसके बाद भी शब्द ने रहना है, शब्द परमात्मा दा अंश उसका एक गुण है, उसी नू नाम और शब्द कह करके पुकारे, इस करके विचार करके देख लो सतगुरु तो पहले तो मौजूद ने, पर यह रस्ता जरा त्रिकुटी का नौ द्वार पार कर दसवें द्वार दो आखा के पिछे आग्ञा चक्र जिसनू किया जाता, जब तक जीवात्मा उस जगह पहुंचेगी नहीं तब तक सतगुरु का समझ लो कि सानू कख भी फायदा नहीं हो सकता, अज तक कुछ होया नहीं होया, जिन्हों दाता असि दात समझ रहे सात संघ जी ये दाने पुजे जड़े अस खा रहे हैं ना, बेशक सतगुरु को ला करके मंग करके खाइए या मूर्तियां पोथिया को मंग करके खाइए, देन वाली ताकत तो काल मौजूद है, सतगुरु भी देंगे तो भुगतान कौन देगा, एक पास तो थानू दात देन दूसरे पास साडा भुगतान करने वास्ते, फिर ये गुरमुतर दी थैलियां दे विच आणगे, विचार करके देख लो सानू ही इन्हां थैलियां दे विच आणा पैणा ने उतले जां निचले जामियां विच, जितनिया भी असि तिरिया अपना रखियां जितने भी दाने खा रहे साडियां लिस्टां ही खत्म नहीं हो रही, कितनिया फरियादा असि करदे आ अनंत काल तो जदों भी असि मनुखे जन्म दे विच आए साडियां कीमतां खत्म नहीं होईयां, फरियादा खत्म नहीं होईयां, ये लिस्टां लंबियां तो लंबियां होंदियां जा रहियां ने, ये लिस्टां अज तक अगर पूरिया नहीं हुई तो किहड़े भ्रम च बैठे कि अगले युगां च पूरिया हो जाणगियां, किसी नूं तिया पुत्तर दे विआह दा ख्याल है, किसी नूं नौकरियां दा ख्याल है, विचार करके देखो जो कुछ पिछले जन्मां च असीं कीता ओह अज भुगतान कर रहे हैं, तो पहले तो निश्चित है और निश्चित नूं कोई बदल नहीं सकता, भगवान श्री रामकंदर जी नूं असीं भगवान समझदे हैं, उन्हां दे पिता दशरथ जी दा उन्हां दा असर देख लो, अंत काल दे जितने यज्ञ उन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच कीते सी, असीं करोड़ जन्म इंसान दे लै करके उतने यज्ञ नहीं कर सकते, तो फिर उन्हां दा फल किधर चला गया, अंत दे विच उन्हां नूं किस तरीके दे नाल तड़फ तड़फ कर पुत्र दे वियोग दे विच जान देनी पई, यानी कि उन्होंने भुगतान देना गया, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास कटने पे, क्यों कटने पे, ये पिछले जन्मों के सब भुगतान सन जेड़े कि इस जन्म दे विच किसी भी तरीके का क्रिया कर्म करने के बाद असि छुट नहीं सकते, कल्पा तक यह जीवात्मा नरकों के विच सड़दी है और सतगुरु ही इस जीवात्मा नूं नरकों चो कढ करके दात देंदे ने, दान देंदे ने, किहड़ा ये मनुखे चोले का उस दान का असि की फायदा चुकिया, जे असि नवे दान की गल करन लग पे, अगर असि इस दान नूं दान समझ लिया हुंदा ना तो सतगुरु अंदर दे विच बहुत पहले प्रगट हो चुके होंगे और सानू इस जगत तो कढ़ के जिंदे जी मुर्दा बना करके ले जा चुके होंगे, पर असी कदी उस दान नू समझे नहीं, कदी इस मनुखे चोले दी खुद भंडार की कीमत जान करके देखी है, हाथ पैर नक कन मुंह विचार करके देखो, ये तो अगर एक आधा हिस्सा ना भी हो तो असि काम किसी तरीके नाल चला लांगे, पर अगर असि इस जन्म तो बिछड़ गए किसी निचले या उतले जामे चले गए तो परमात्मा नू कदों और किस लोक किस युग दे विच जा करके असि प्राप्त कर लवांगे, यानी कि एक ऐसा वड्डा सृष्टि का सिरमौर इस मनुखे जन्म नू असीं प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा बनन दा अधिकार सानू मिल चुका है, मिलन दा नहीं, असीं परमात्मा बनन वास्ते इंसानी जन्म दे विच आए हां, परमात्मा दा ही रूप है ए इंसानी जन्म जड़ा है, तो असीं इस नू किस तरीके दे नाल खजल कर रहे हैं, इंद्रियां दे विकारां दे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे ऐसे भयानक विकार और ख्याल असीं अंतर दे विच एकत्रित कर रहे हैं, जड़ा विचार करके देखो कि असीं कैसी कैसी प्लानिंग बना करके लोगों का हक मार दिया, जिसनू असीं व्यापार कहिंदे आ, व्यापार क्या लोगों के हक नू मारना व्यापार किया जाता है, मुल्क दे मुल्क लाशां दे ढेर बढ़ा देने ये मुल्कां दा व्यापार किया जाता है, सारी सृष्टि अंधकार दे विच गर्क हो रही है, इस वक्त असीं इस कलयुग आखिरी पड़ाव दे विच आखिरी समय दे विच मौजूद हां, इस वक्त भी जड़ी जीवात्मा नहीं चेती अपने सतगुरु नूं प्राप्त ना कर सकी, ए लक्कड़ अंदर दे विच अग ना प्रगट कर सकी, तो उस दे उपर रोटी नहीं पक सकदी, यानी कि नाम प्रगट नहीं हो सकदा, शब्द नहीं मिल सकदा, और जिस नूं असीं नाम या शब्द समझ करके बैठे हां उस नूं जपण वास्ते एक जीवात्मा की लोड़ है, एक चेतन सत्ता की लोड़ है, अगर ये चेतन सत्ता ना हो तो लफज अपने आप दे विच मुड़दे ने, जड़ प्रकृति नाल संबंध रखने वाली वस्तु इस जीवात्मा के बोझ नूं चुक करके पार ब्रह्म सचखंड नहीं पहुंचा जा सकती। सचखंड ले जाने वाला जो शब्द है नाम है वह मनुखे जन्म की दोनों अखा के पिछे अंतर दे दिन रात चिम चुम वरसे अमृत धारा मन पीवे। मन ही ने पीना है जब तक मन असी अंदर नहीं लगावे आत्मा अंदर जा ही नहीं सकती। फिर किस तरीके दे नाल असी भजन कर रहे हैं ना सानू भजन की डेफिनेशन का पता है ना सतगुरु की डेफिनेशन का ना नाम की डेफिनेशन का। इस बाहर दी डेफिनेशन असी गलत कढ़ लिया तो अंतर की डेफिनेशन कदों किस युग दे विच प्राप्त कर सकांगे। सो बाणी दे विच सतगुरां ने सारे भेद जड़े ने बचे अच्छे तरीके दे नाल प्रगट किए ने। इस शब्द दे विच भी सारे भ्रम जड़े ने गुरु साहब अज दूर कर रहे ने। संक्षिप्त रूप दे गुरु साहब ने सारा भेद दे दिता है कि वह नाम जड़ा है वह फल जड़ा है वह ताई प्राप्त होता है जदों सतगुरु की सेवा करिए। और सतगुरु अगर शब्द है तो शब्द की सेवा सिर्फ सुरत कर सकती है ख्याल कर सकता आत्मा कर सकती है और कोई भी उस शब्द की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि उस शब्द में वह देख ही नहीं सकता। आत्मा की ताकत है सुरत और निरत की देखने की और सुन की यही देखती है उस शब्द को यही सुनती है और यही उसकी सेवा है और इसी सेवा वास्ते ही यह मनुखा जन्म सृष्टि का सुरमोर इस जीवात्मा दान के रूप दे विच अकाल पुरख के हुक्म के नाल सतगुरु के जरिए दिता गया इसकी झोली तकसीम किया गया। और असि यह सारा जन्म जड़ा है मनुखा जन्म काल के मूह दे विच यानी कि मन के हुक्म कुर्बान कर रहे हैं और दिन रात हर पल हर कड़ी काल के मूह दे विच ही अपना कारण जो है पक्का कर रहे हैं। इस तरीके दे नाल जन्म जन्मांतरा की जड़ी मैल है जड़ी असी एकत्रित की है कामना और इच्छा की यह कदे भी नहीं धुल सकती। क्यों जड़े कि पिछले जन्मां च असी कामना की या हुण भी की है वह काल पुरुष के कोल नोट की हुई है और उस जरूर पूरी होएगी। कोई रोल पिटण की गल नहीं है बार बार कहण की लोड़ नहीं है। तुसीं एक बार ख्याल कर लो सानू कार चाहिए है कार की तुहानू इस सृष्टि के तीनों लोगों की दौलत देने वास्ते काल कुरबान है। तुसीं उहदे उपर कुरबान होकर के देखो जिस तरीके नाल मन पर असीं कुरबान हाँ काल भी साडे उपर कुरबान है। जितनी भी सृष्टि की चमक नजर आ रही है सूक्ष्म और कारण लोगों जिहड़ी जीवात्मा अंतर भी जांदी है उन्होंने पुछ करके देख लो कैसी कैसी लुभावनी रचना उस काल ने रचना की हुई अंतर दे विच। उस रचना दे विच देख करके जीवात्मा कभी पार ही नहीं जा सकती। इस तों विचार करो कि कैसी सुंदर रचना है। ऐसी सुंदर रचना यानी कि कुरबान है काल इस जीवात्मा दे उपर अगर यह मंग कर दी है बेशक मन दे रूप दे विच मंग कर दी है वह कहिंदा तू मंग दे सही मैं तेरे उपर कुरबान है। मंगा असीं मंगी जांदे आ असीं बार बार कहिंदे आ साडी दिक्कत कदों आंदी है असीं कहिंदे साडी मंग हुणे ही पूरी हो जाए। यह भी काल की चाल है। यह मंग उदों पूरी होंदी है जदों पिछला भुगतान भी चलता रहे और अगला कुछ बच जाए तो तुहानू कुछ जरूर मिल जाएगा नहीं तो इच्छा तुहाडी नोट कीती गई है अगले जन्मां जरूर मिलेगी। सो यह है जन्म जन्मांतर की मैल। यह जन्म जन्मांतर की मैल ताई जा सकती है अगर फल की प्राप्ति हो और फल जड़ा है अंतर दे विच है और बिना सतगुरु के प्रगट हो अज तक किसी नूं मिलिया नहीं। और सतगुरु कदों देंदे ने जदों उन्हां दी सेवा होवे यानी कि सुरत शब्द की सेवा करे और ताई करेगी जदों यह नौ द्वारा चों निकल करके अंदर मन पहुंचेगा और मन जड़ा मन के अंदर ही यह आत्मा कैद है और अपने आप ही यह जीवात्मा जो है उस शब्द के नाल नाम के नाल जुड़ जाएगी जो बाद ही सतगुरु जो है यह बाकी के रस्ते नूं तय करा करके यह जन्म जन्मांतरा की मैल नूं तो देंदे ने।
पतित पावन प्रभु तेउ नाम पूरब कर्म लिखे गुण गा।
पतित पावन और पूरब लिखे कर्म और पूरब लिखे कर्म केड़े सी पिछले मनुखे जन्म च आकर के जीवात्मा ने जड़ी भी फरियाद कामना इच्छा कीती सी ए पूरब लिखे कर्म हैं। असि बहुत ही गलत अर्थ कढ़दे आ कि पूरब लिखे कर्म का अर्थ यह कढ़दे आ कि परमात्मा ने अकाल पुरख ने साडे खाते दे भी जो कोई लिख दिता है बिल्कुल गलत गल है। असली पाप बिल्कुल स्पष्ट है आपे बीज आपे ही खाओ कर कर करना लिख लै जाओ। जो कुछ असि करते हैं जो कुछ इच्छा साडी कामना होंदी है यह अकाल पुरख नोट करता रहा है और जदों मनुखे जन्म भेजता या किसी भी जगह भुगतान वास्ते भेजता इन्हां इच्छा और कामना दे विचों ही कुछ कर्म जड़े ने दे करके साडा जन्म हुंदा है। तो पूरब लिखे दा है ये बिल्कुल पहले दिया मंगा और इच्छा जड़िया ने साड़िया कीतिया गया और पतित पावन यानी पतित नू पावन करन वाली जड़ी चीज है वह अंतर दे विच है और वह ताई प्राप्त होंदी है जदों असी सतगुरु की सेवा करिए।
साधु संग होए उधार सोभा पावे प्रभु के द्वार।
साधु संग होए उधार सोभा पाए प्रभु के द्वार। विचार करके देख लो साधु कौन है। इस जगत दे विच भगवे वस्त्रां नूं असीं साधु कह रहे हैं ते इह वी सरकार ने साडे परम पैदा कीता। असली गल की सी कि सतगुरु नूं ही साधु किया गया है ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਠ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੋ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਨਾਨਕ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਫਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ करके ही असं मुक्ति प्राप्त कर लवेंगे। तो यह जीवात्मा का बड़ा वड्डा परम है जिहड़ा मन ने फैला करके रखिया। तो साधु की संगत जड़ी है, यह अंतर की संगत की गल की है। इसे भी सारे पिन भेद खत्म हो जाते हैं। गुरु घर के भी जाकर के देख लो कितने पैरे बैठे ने, कितनी सिक्योरिटी है। तुम चाह करके भी कितनी भी निमाणी और दीन जीवात्मा हो सतगुरु तक पहुंच नहीं सकती। क्यों? कारण की है कि काल का बड़ा भयानक जाल जरा बड़ी दलदल फैली हुई है। इस दलदल के बीच उलझ जावे तो अभी सतगुरु को प्राप्त कर नहीं सकते। इस करके ऐसी मक्खी बनो जी किनारे ते बैठ करके जगत का स्वाद भी लै जाए, सतगुरु को उपदेश भी लै लवे, सतगुरु का निशान ला करके सत समुंदर पार रह करके अपने अंतर के परमात्मा सतगुरु प्राप्त करने की अधिकारी बन सकती है। पर अगर असि इस दलदल के फस गए तो सात संगत जी याद रखना साढ़े पार भी चले जाएंगे, इस मनुखा जन्म भी खोलिया जाएगा। इस करके सारे चक्रा चो निकलो, साधु की संगत करो अंतर के भी। अंतर के भी साधु हर वक्त मौजूद है, जिस तरह लकड़ अग मौजूद है उस तरीके हर कट के नाम शब्द मौजूद है, परमात्मा सतगुरु मौजूद है। अगर अस उन्हें कहने पार ब्रह्म ईश्वर सतगुरु, तो वह सतगुरु परमात्मा अगर है तो परमात्मा के कट कट के व्याप्त है। कोई सानू ज्यादा उदम करने की लोड़ नहीं है, परमात्मा पहले तो ही मौजूद है। उदम सिर्फ इतना करना है कि बाहर तो ख्याल नू लिया करके अंदर बिठाना है। तो जरा निशान सानू मिलिया है मन नू बिठाना है। मन अगर अंदर आ गया पलट गया तो वह ताकत अंदर अपने आप ही देख लेगी उस ताकत नू। क्यों? वह ताकत पहले तो ही अंदर मौजूद है। तो लफ्जा ने कुछ भी नहीं देना, असली गल ए सीगी कि मन नू अंदर लियाना है, मन नू बाहरों काट के लियाना है। तो अगर असी इंद्री दे नाल जपन लग गए, मन बाहर भ्रमण करता रहा तो अनंत काल तक असी जपते रहिए, असी इसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु की संगत, साधु की संगत जड़ी है, यह जीवात्मा इस लायक बना देती है कि सचखंड पहुंच करके इस मान की प्राप्ति हो। क्यों? मान कैसा है कि दोबारा तो इस फिर पिंजरिया इन्होंने लोगों के भी जन्म और मरण के गेड़ नहीं आना पैदा।
सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा तोर बाचे सब सुर नर देवा।
चरणा की सेवा और तूर बाचे सब नर देवा। हुण विचार करके देखो जिहड़े देवी देवता ने इह देव लोक ही सूक्ष्म कारण लोगों के मौजूद ने, क्या उन्हां नूं मिट्टी की लोड़ है? सानू चरण धूड़ नहीं समझ आए कि चरण धूड़ केड़ी है, चरण धूड़ केड़ी है। गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर परमात्मा सतगुरु और शब्द है, शब्द की है प्रकाश और आवाज है, तो उसके विच धूड़ कैसी निकल रही है? प्रकाश की धूड़ यानी कि नाम की धूड़ निकल रही है, आवाज धुन निकल रही है जिहड़ी जीवात्मा अंतर दे विच जांदी है। पहले पड़ाव ते भी जिसने पहुंच गया उसने अपने सतगुरु की भक्ति पूरी कर ली, बाकी का रस्ता जिहड़ा है वह सतगुरु का मजबूत ने आप तय कराते हैं। अंतर दे विच उन्हां दे चरणां दे विचों जिहड़ियां किरणां निकलदी ने, यह है चरण की तूड़, यह आवाज निकलती है, प्रकाश निकलता है। इस तूड़ की, इस आवाज की देवी देवता नूं भी लोड़ है, और अगर देवी देवता भी अगर इस तूड़ नूं नाम नूं प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुखे जन्म दे विच आकर के असी उन्हां देवी देवता नूं प्राप्त करन लगे हैं। विचार करके देखो किन्नियां लंबियां लाइनां इस जगत इस मौजूदा समय च हिंदुस्तान च लगियां हुई हैं। यह सारिया काल दी बड़ी भयानक चाल है और बड़े तरीके दे नाल इच्छा और कामना दे रहित और सारिया जीवात्मा नूं पिंजरे पक्के करी जा रहा। असी अपने हाथी अपने जन्म तय करते हुए ताले लगाई जा रहे हैं और ये सारे ताले पिंजर के भी सानू भ्रमण करना पेगा। विचार करके देखो उन्होंने देवी देवत्या भी गुरु साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि इस नाम की धूड़ की लोड़ है और ये नाम की धूड़ सिर्फ इंसानी जन्म के मिलती है और यह नौ द्वारा च नहीं दसवें द्वार के भी यानी अखां के उपर मिलती है और असी इस शरीर के भी नौ द्वारा च फसी बैठे हैं। यह नौ द्वारा हर वक्त गंध निकलता और यह गंध कभी भी आज तक बंद नहीं होया, असी बंद कर सकते ही नहीं। और जब तक इस गंध चो नहीं निकलांगे असी सच्चे द्वार यानी कि दसवें द्वार पहुंच नहीं सकते। उस परमात्मा की धूड़ जड़ी चरण की धूड़ है जिसनू नाम की धूड़ क्या वह सानू प्राप्त नहीं हो सकती। अगर वह देवी देवता भी इसकी प्राप्त कर रहे हैं तो सानू उन्हां कोल शिक्षा लैनी चाहिए है कि असी मनुखे जन्म में आ सकते परमात्मा बनने का अधिकार मिल चुका है तो अज तक असी इस धूड़ नू क्यों नहीं हासिल कर सके। और बड़िया जीवात्मा ने बड़ी चतुराई के नाल मिट्टिया मूंह ते मलदियां ने और मूंह नू डाला कर लेंदियां ना सोच रहे ने साडे करम कटे जा रहे ने। कितना वड्डा परम है, असी करम बना रहे हैं या करम कटा रहे हैं? मूंह नू काला कर रहे हैं या मूंह नू परमात्मा दे दरगाह दे विच उजला कर रहे हैं? इस मूंह दे उपर मिट्टी जिहड़ी असी कालक टोक रहे हैं ना इस दे अंदर परमात्मा मौजूद है। इनडायरैक्ट वे दे नाल असी परमात्मा दे मूंह ते मिट्टी मली जा रहे हैं। कैसा वड्डा परम है और कैसी नीचता की किरिया करन दे बाद भी असी इह समझ करके बैठे हैं कि असी सचखंड पहुंच जावांगे।
नानक पाया नाम निदान हर जप जप उदरिया सगल जान।
नानक पाया नाम निदान, नाम निदान, नाम यानी के निदान यानी के खजाना। हुण इस तुक तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि पहली तुक जिहड़ा अर्थ दिता गया नाम की धूड़ निकलती है, ठीक उस तरीके उसनू नाम का निदान किया है कि नाम के निदान नू तू प्राप्त कराना है। नानक नाम जप जपिए अंतर बाहर रंग, इस तो कुछ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि बाहर दे जप नू पीते बिना तू अंदर दा जप कर नहीं सकता, बाहर दा कर्म कीते बिना अंदर दी उपासना हो ही नहीं सकती। असि अख बंद करके उपासना करन लग जांदे आ, इह उपासना मन दी उपासना है, मन कितें है बाहर, बाहर दे जप कीते बिना। बाहर दा जप केड़ा, सतगुरु जिहड़ा भी नाम देंदे ने, बाहर दा नाम केड़ा, सतगुरु सतसंग जी बैठ करके अपने मुखारबिंद ते सतखंड की ताकत दे नाल जो भी किरणा निकलदियां ने साडे कन्नां दे नाल लफ्ज़ बन करके टकरांदियां, इह सारा दा सारा नाम है। और इसका जप की है, उस निर्देश नू पालन करना, अपनी अस्थी नू मिटा देना, मन नू कुर्बान कर देना। मन की कुर्बानी ही मन नू समेटना है, और मन नू समेटना ही अंतर दे विच जीवात्मा दा सिमटाव है। और यही क्रिया है जिहड़ी अज तक असी कीती नहीं, असी बाहर दी क्रिया कर रहे हां ते अंतर दी कदी प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जब तक इस मजबूत नू अंतर बाहर रंग दी तुक नू अच्छे तरीके दे नाल कारगर नहीं कर लवांगे, तब तक सानू ए नाम दा निदान जिहड़ा प्राप्त हो ही नहीं सकता। और नाम दे निदान नू प्राप्त कीते बिना जीव जीवात्मा दा उद्धार कदों और किस काल दे विच होएगा, ये विचार करो।
श्री धरि मोहने सगले उपावन निरंकार सुखदाता,
निरंकार सुखदाता, निरंकार कह रहे ने जिसका कोई आकार नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर रहे ने कि परमात्मा का जो गुण है और निरंकार यानी कि कोई उसका आकार नहीं है, एक आवाज और प्रकाश है। सुखदाता, सुख देने वाला, सुख कदों मिलेगा जदों ये जीवात्मा सचखंड पहुंच जाएगी। इन्हां मुल्कां ते भी सुख है ही नहीं, जिन्हां वस्तुओं और संबंधों नूं प्राप्त करना असीं सुख समझ रहे हैं। विचार करके देख लो, साडे कोल तां अजे आईयां नहीं, असीं मंग कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। बहुत सारिया जीवात्मा मौजूद ने जिन्हां कोल सारिया वस्तुआं पहले तो हैं, और जिन्हां कोल है ने उन्हां कोल बैठ करके पूछ लो, भाई तुसी सुखी हो गए, तुहानू शांति आ गई, तो अपने आप ही वो दस देगा, तुहाडे कोल भी वड्डी पंड खोल के तुहाडे अगे रख देगा। तुसी आपे शर्मा के उत्थे उठ जाओगे भी ये तो मेरे कोल भी ज्यादा दुखी बैठा, मेरे कोल भी ज्यादा अशांत है। तो फिर असीं किते भी शांति समझ रहे हैं, जे शांति कदों सानू मिल सकती, कदों सानू सुख मिल सकता है, जदों असीं इह सारी संसार की जगत की रचना चो जिहड़ी नष्ट होने वाली है इहदे विचों निकल जावांगे और उस परमात्मा दे गुण दे नाल जुड़ जावांगे। वह गुण ही है परमात्मा दे विच समान दे काबिल जरा कि सानू लै करके सचखंड पहुंच जाएगा, ता ही जीवात्मा सुखी हो सकती है। और उस परमात्मा का कोई रंग रूप रेख आकार नहीं है, वो एक आवाज और एक प्रकाश है।
ए सब छोड़ करे उन सेवा कौन बिकियार सिमाता,
और कहंदे ने उस परमात्मा दी ऐसी दित्ती हुई दात नू परमात्मा दे गुण नू नाम नू प्राप्त करन दी सेवा ना करके इस जगत दे विच जितनियां भी जड़ वस्तुआं और संबंधा दे प्रति उनू कायम रखण वास्ते तू उदम कर रहा है, उनां दी प्रतिपालना कर रहा है, सेवा कर रहा है, इह सारा दा सारा बिख है, इहदा भुगतान तैनू देना पवेगा। बिख जदों भी सप कटदा है ना ते इकदम मौत नहीं आउंदी, कुछ समय बाद यानी कि जो जो जहर शरीर दे विच फैलदा जांदा ब्लड दे नाल मिल करके उसे त्यों त्यों जो है जीव निश्चल हुंदा यानी मौत नू प्राप्त हुंदा। और जो जो मनुखे जन्म दे आ करके ये जीवात्मा जो है इस बिख नू चटदी है यानी कि वस्तु और संबंधा नू एकत्रित करती है कामना और इच्छा नू, त्यों त्यों ये बिख चढ़दा, बिख चढ़ने नाल ही की हुंदा मनुखा जन्म जो है हथों खो लिया जाता और अपने हाथी वो जो है बाकी दे निचले और उतले जामे पक्के कर दिए यानी कि उसकी मौत हो जाती है। जीवात्मा तो निश्चित और अटल है, उसकी मौत नहीं आती। ये विचार करने वाला मजबूर है कि शब्द भी अधूरे ने, अर्थ भी अधूरे ने, पर विचार कर लेना चाहिए कि मौत किसकी होती है, यानी कि बार बार ये जो मनुखा जन्म सानू मिलता है ना ये खो लेना ही है ये जीवात्मा की एक तरीके नाल मौत है, क्योंकि बाकी जन्मां दे विच बाकी जूनां दे विच जा करके ये जीवात्मा जाग नहीं सकती, चेत नहीं सकती, सुती पई है, उत्ते काम नहीं कर सकती, सिर्फ भुगतान दे सकती है। अगर ये जाग सकती है तो सिर्फ इंसानी जन्म दे विच, और इंसानी जन्म दे विच जगाण वास्ते इसनू एक गुरु की लोड़ है, एक ऐसे कट की लोड़ है जिद विच शब्द प्रगट हो, प्रकाश प्रगट हो, वही जीवात्मा नू चेता सकदा। विचार करके देख लो, और किसी भी जून दे विच ये जीवात्मा नू जगाया जा ही नहीं सकता।
रे मन मेरे तू गोबिंद भाज,
रे मन मेरे तू गोबिंद भाज, गोबिंद तू गोबिंद नू भजन करना। हुण गोबिंद की परिभाषा अगर असी आकार समझिया तो भजन की परिभाषा भी असी गलत कर ली, अगर असी उस नू शब्द समझ लिया आंदा तो सानू भजन की परिभाषा भी मिल गई होंगी। यानी कि मन नू बिल्कुल स्पष्ट कर रहे ने रे मन गोबिंद भाज, हुण किसी नू समझ ही नहीं आई कि मन नू समझा रहे ने कि मन नू भजन कराना है, और असी भजन किस नू करा